ओम ब्रह्म सत्यम। गीता के चौथे अध्याय में एक प्रसंग आता है और अकर्म उसको कहते हैं जो सत्पुरुष किया करते हैं या जितने भी सदगुरु ब्रह्म ऋषि हुए वो जो कुछ भी करते हैं उसको अकर्म कहते हैं। गीता में इसीलिए इसकी एक श्लोक के द्वारा व्याख्या की गई है, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तः निराश्रयः कर्मणि अभिप्रवृत्तः अपि न एव किंचित करोति सा। कहते हैं त्यक्त्वा कर्म फला संगम, जो कर्म करने के अहंकार को और कर्म फल की आसक्ति को त्याग देता है, नित्य तृप्तः निराश्रय और आत्म स्वरूप में नित्य तृप्त रहता है, निराश्रय और निराश्रय हो जाता है। अर्थात आश्रय कहते हैं जो कुछ भी हम कर्म करते हैं उसका फल या उसका लक्ष्य हमारे सामने होता है, उसके लिए ही हम कर्म करते हैं और हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता। लेकिन जिसने सब कुछ प्राप्त कर लिया, कुछ प्राप्त करना जिसके लिए बाकी नहीं रहा और जो आत्मा में नित्य तृप्त है, इसीलिए उसके अंदर कोई भी कर्म फल का आश्रय नहीं होता, इस लोक में या परलोक में। मरने के पश्चात उसको, जैसे हमको आशा होती है कि मरने के पश्चात हमको अच्छा जन्म मिलेगा जहां ईश्वर की भक्ति करने को मिलेगी, मोक्ष की प्राप्ति करने को मिलेगी, ये भी एक आशा होती है। तो जो नित्य तृप्त है वो निराश्रय है, अर्थात उसके कर्म करने का आश्रय कोई भी नहीं है, किसी फल की सुंदर उसको कोई भी फल प्राप्त करने की जरूरत। तो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति कर्मणि अभिप्रवर्तः अपि न एव किंचित करोति सा। कहते ऐसा व्यक्ति भली प्रकार कर्म करता हुआ भी न एव किंचित करोति सा, वो किंचित मात्र भी कुछ नहीं करता। जिसकी ये स्थिति है कि त्यक्त्वा कर्म फला संगम, जिसने कर्तापन को भी त्याग कर दिया है, अर्थात कर्म करने का जो अहंकार है कि मैं करता हूं, ये भाव उसके अंदर बिल्कुल खत्म हो चुका है और कर्म फल की आसक्ति भी जिसके अंदर बिल्कुल समाप्त हो चुकी है और जो केवल आत्मा में नित्य तृप्त है और निराश्रय है, ऐसा सत्पुरुष, ऐसा व्यक्ति भली प्रकार भी यदि कर्म में वो व्यस्त है तब भी वो किंचित मात्र भी कुछ नहीं। ये लक्ष्य है, इस स्थिति की प्राप्ति के लिए ही ये मनुष्य जीवन है, इसी के लिए ईश्वर भक्ति है। तो ये स्थिति बिना गुरु के जीवन को देखे हुए ये कैसे समझ में आ सकता है? इसीलिए जिसका गुरु नहीं वो 100 वर्ष भी शास्त्र का स्वाध्याय करता रहे उसको शास्त्र कभी समझ में आ नहीं सकता। शास्त्र तभी समझ में आएगा जब किसी सत्पुरुष का प्रैक्टिकल जीवन उसके सामने, क्योंकि शास्त्र का प्रमाण होता है सत्पुरुष का जीवन। अब ये स्थिति को बयान कर दी, इसको अकर्म कहते हैं कि कर्म करते हुए भी मन पर उसका लेश मात्र भी असर ना हो, उसको अकर्म। ये अकर्म की स्थिति केवल सत्पुरुष की होती है, अन्य किसी की नहीं। जो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चल रहा है उसकी ये स्थिति नहीं होगी, जो पहुंच चुका है उसकी ये स्थिति होगी। इसीलिए ये जो स्थिति है ये हमारा लक्ष्य है। और यदि इसका प्रमाण देखा जाए तो वो सत्पुरुष का जीवन है। जैसे महाराज जी, महाराज जी की जीवनी यदि पढ़ी जाए, तब वो जलमादा में जब तप कर रहे थे, वहां उन्होंने ये बात कही थी कि जिस चीज की 14 वर्ष से तलाश थी वो आज उनको प्राप्त हो गई। जबकि 13 वर्षीय आयु में महामंत्र प्रकट हो गया था, उसके पश्चात ये सारी वाणी प्रकट होनी शुरू हो गई थी। लेकिन उसके बाद भी 14 वर्ष और लग गए, तब उनको वो स्थिति प्राप्त हुई जो अकर्म की स्थिति कहलाती है, जहां कर्म का असर मन पर बिल्कुल भी समाप्त हो जाता है। अब बताइए, जो पूरे संसार से उपरस हो गया, जिसका मन पूरी तरह से ईश्वर में लीन हो गया, वो व्यक्ति फिर कर्म क्यों करता है? उसके बाद भी महाराज जी की वाणी सारी लिखी गई। भगत जी से महाराज जी की मुलाकात वहीं पर हुई थी, तो वहीं पर भगत जी ने महाराज जी से कहा था कि महाराज ने संग रख ली थी। महाराज जी ने कई बार मना किया, बनारसी ये किसी को अपने संग नहीं रख सकते, और साधु का जीवन बड़ा कठिन होता है, तुम उस तप को सहन नहीं कर सकते। लेकिन भगत जी ने हट नहीं छोड़ा। सारा विवरण आप कई बार जीवन गाथा में मेरे गुरुदेव में आप पढ़ चुके होंगे, सुन चुके होंगे। तो कितने घने जंगलों में, स्वरूपा का जंगल, फीला का जंगल, जहां दिन में भी भगत जी को आग पर हाथ गर्म करके वाणी लिखनी होती, इतनी ठंड थी वहां। और जंगली जानवर इतने थे कि महाराज जी जब बाहर मैदान में बैठे होते थे पेड़ों के नीचे, उस समय बीछ वगैरह जो जंगली जानवर हैं उनके चारों तरफ घूमते रहते, और उनकी झोपड़ी के बाहर ही शेर की दहाड़ भगत जी सुना करते थे। तो कैसा भयंकर वो स्थान होगा, उस भयंकर स्थान में वाणी अवतरित हो रही है और भगत जी इसको लिख रहे हैं। और वाणी किसके मुखारविंद से अवतरित हो रही है? उस संत के मुख से अवतरित हो रही है जिस संत के मन पर किसी भी कर्म का कोई इफेक्ट है ही नहीं, जो उस ईश्वरीय सत्ता में नित्य तृप्त है, जो उसमें तृप्त है, फिर संसार में किसी किस तृप्ति की वो तलाश है? इसलिए संसार का कोई भी सुख, कोई भी मान, कोई भी स्थिति उसके मन को नहीं डोला सकती। तो ऐसी स्थिति में वो वाणी आ रही है और भगत जी द्वारा लिखी जा रही है, तो मन में एक प्रश्न उठता है, ये फिर क्या स्थिति, ये वाणी आ क्यों रही है? पर आज हमारे सामने वो वाणी उपलब्ध। तो इसीलिए सत्पुरुष बनने के बाद जो कुछ भी क्रिया उनके शरीर से होती है वो उस संत का प्रारब्ध कहलाता है। इसीलिए उनकी क्रिया को प्रभु की लीला कहा जाता है। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि संसार में मैं जन्म लेता सा दिखाई पड़ता हूं। अब महाराज जी के शरीर से प्रभु महिमा का बयान हो रहा है, प्रभु की वाणी प्रकट हो रही है, तो हम क्या कहते हैं? आमतौर पर हम ये कह देंगे कि महाराज जी की वाणी। लेकिन महाराज जी से पूछो तो वो कभी नहीं, उन्होंने नहीं कहा कि मेरी वाणी। पूरी जिंदगी में उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि ये मेरी वाणी। उन्होंने यही कहा, यह अमर वाणी है, अगम वाणी है, ये प्रभु की सीधी आवाज है। तो अब बताइए, प्रभु उस संत के मुख से अपनी ही महिमा का बयान कर रहे हैं, और हमारा दुख दर्द क्या है, उसका निवारण कैसे होगा, उसका साधन बयान कर रहे हैं। तो अब बताइए, हमारी चिंता कौन कर, हमारे माता पिता ही नहीं जानते कि मेरा कल्याण किसमें, लेकिन प्रभु जानते हैं कि मेरा कल्याण किसमें, क्योंकि जीव का रक्षक प्रभु ही है। जीव की देह को यानी मेरी देह को जो प्रारब्ध प्रदान किया है वो प्रभु ने ही किया। उस प्रारब्ध चक्र में मैं फंसकर ये मानव जीवन व्यतीत कर रहा हूं, और जब वासना के वशीभूत होकर मैं इस देह से कर्म करता हूं तो वासना धारण करके जो कुछ भी कर्म किए जाते हैं उसका जो फल होता है वो सदैव मन को बेचैन किया, मन में नए संस्कार बना लेता है। पुराने संस्कार ही पहले बहुत हैं, नए और बना लेता है। इसीलिए जो कुछ भी हम संसार में करते हैं, अच्छे से अच्छे कर्म क्यों ना करें, कितने भी अमीर क्यों ना हो जाएं, कितने भी सुखी क्यों ना हो जाएं, लेकिन हमारी मानसिक बेचैनी कभी भी समाप्त नहीं, ये हमारी परमानेंट स्थिति बनी रहती। जो कुछ भी कर्म करते हो वो सकाम कर्म करते हो, कामना रख के करते हो, इसीलिए आपकी कामना जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती है कामना के संस्कार और गहरे हो जाते हैं। इसीलिए जिस हालत में यह मनुष्य पैदा होता है उसी बुरी हालत में ये स्वार्थी जीव संसार से विदा। हमारी स्थिति को कई बार हम ही नहीं समझते, हमारे माता पिता ही नहीं समझते, हमारे रक्षक ही नहीं समझते, लेकिन गुरु समझते, अंतर्यामी परमेश्वर समझता है। इसलिए यदि किसी को गुरु के पास बैठने का मौका मिल जाए तो वो आपको वो चेतावनी देता है, आपको जागरूक करता है। जैसा कि महाराज जी के साथ जो उनके शिष्य बैठे तो महाराज जी के साथ उनकी जो वार्तालाप हुई उनको यदि गुरुदेव ने कहा हम पढ़े उससे ये साफ स्पष्ट हो जाता है कि गुरु किस प्रकार शिष्य का मार्गदर्शन करता है उसके दुखों को दूर करने के लिए। तो इसीलिए उस गुरु के मुख से प्रभु लीला किया करते हैं, उस गुरु के शरीर से प्रभु लीला किया करते हैं। इसीलिए गुरु को ऐसा प्रारब्ध दिया जाता है, ऐसा कर्म करने के लिए दिया जाता है जिसका उस गुरु से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता। महाराज जी ने अपनी देह से जो कुछ भी कर्म किए हैं जब से वो गुरु बने उसके पश्चात उन कर्मों का महाराज जी से कोई संबंध नहीं। इसीलिए जो अवतार से के शरीर से कर्म होते हैं उसको लीला कहा जाता है, जिसका मेरे से संबंध ही कोई नहीं। जैसे मान लिया कोई लीला हो रही है, कोई नाटककार नाटक कर रहा है, पूरा नाटक कर लेता है, नाटक का जो कुछ भी वो पात्र बनता है, मान लिया किसी ने हनुमान का पात्र बनकर हनुमान की लीला की तो हनुमान ने जो कर्म किए या हनुमान के कर्म जो उसने दर्शाए लीला के माध्यम से तो उन कर्मों का संबंध उस नाटक करने वाले से उस पात्र से कोई होता है? वो केवल आपको दिखाने के लिए कर रहा है, वो आपके लिए कर रहा है लीला, स्वयं से उसका कोई संबंध नहीं। ठीक उसी प्रकार प्रभु की लीला जो सत्पुरुष के की देह के माध्यम से होती है उसका सत्पुरुष से कोई संबंध नहीं होता, उसका संबंध हमसे होता है, वो सारी लीला वो हमारे लिए होती है। इसीलिए पूर्ण गुरु का हर वचन हर कर्म शिष्य का मार्गदर्शन करता है, अज्ञानी जीवों का मार्गदर्शन करता है। तो शास्त्र जब पढ़ते हो, शास्त्र पढ़कर जब पूर्ण गुरु के जीवन से उसको उसका मनन करोगे उस पूर्ण गुरु के जीवन के द्वारा, तब आपको हर चीज समझ में आती है। जैसे कि मैंने एक श्लोक चौथे अध्याय से गीता का पढ़ा है, 20वां श्लोक, तो ये अकर्म की स्थिति गीता बयान कर रही है। अब इसको देखोगे कहां, इसका एक्सपेरिमेंट आप कहां करोगे? आप तो अपने जीवन में कर नहीं सकते, पता नहीं कई जन्म में आपकी ये स्थिति प्राप्त हो गया। तो इसीलिए गुरु का जीवन जब आपके सामने होता है, किसी पूर्ण गुरु पर जब आपका भरोसा होता है, विश्वास होता है, पक्का निश्चय होता है कि हाँ वास्तव में ये पूर्ण गुरु है और इसके द्वारा मेरा कल्याण होगा, तब ये सारे शास्त्र उस गुरु के जीवन से समझने आ सकते। नहीं तो शास्त्र पढ़ पढ़ के बुद्धि अंधी हो जाती है, अंधी का मतलब बुद्धि इतनी अहंकारी हो जाती है कि मैंने बड़े शास्त्र पढ़े हैं, सारे शास्त्र के मर्म को मैं जानता हूं, ये अहंकारी बुद्धि, वो ज्ञानी नहीं हो पाती। अर्थात शास्त्र में जिनकी रचना ईश्वर प्राप्ति के लिए की गई थी, ईश्वर अनुभव के लिए की गई थी, उस ईश्वर का अनुभव उसको नहीं हुआ। इसलिए वाणी कह रही है कि चार वेद का पंडित रोए पावक ना कुछ सा। तो ये जो अकर्म की स्थिति है, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। देखिए ये स्थिति कब आती है, जहां वासना शून्य हो जाती है, एक भी इच्छा बाकी नहीं रहती। क्यों बाकी नहीं रहती, क्योंकि ये स्थिति है नित्य तृप्ता। इस स्थिति को प्राप्त करके ये जीव निरंतर तृप्त रहता है। नित्य तृप्ता का मतलब होता है निरंतर तृप्त रहता है। जो निरंतर तृप्त रहता होगा वो संसार में क्या प्राप्त करेगा, कौन सी चीज उसको तृप्त करे, तो वो नेत्र तृप्ति कहां प्राप्त हुई है उसको, वो आत्मा में प्राप्त हुई, जो इस देह के अंदर स्वयं मौजूद है। हम तो बाहर संसार में पदार्थ ढूंढते हैं, लोगों को ढूंढते हैं कि थोड़ी सी तो तृप्ति इससे मिल जाएगी, इसीलिए दोस्ती करते हैं, इसीलिए लोगों से संबंध बनाते हैं, इसीलिए वस्तु इकट्ठी करते हैं, इसीलिए पैसा कमाते हैं, क्योंकि हम अतृप्त हैं, हम जानते हैं हम अतृप्त, हम प्यासे, तृष्णा भरी पड़ी है हमारी, ये गहरी प्यास है भोगों की। जो आदमी संसार में जितना बड़ा है, जितनी दौलत ज्यादा कमा रहा है, एक गरीब को खुश होना चाहिए ये सोचकर कि ये मुझसे ज्यादा प्यासा, मैं इससे कम प्यासा, इसकी दौड़ लंबी है, इसका मतलब इसकी प्यास बहुत गहरी है। तो अब बताइए कि हम संसार में प्यास बढ़ाकर अपनी प्रगति समझते हैं अंध बुद्धि होने के कारण। बुद्धि में क्योंकि ज्ञान नहीं है, इसलिए अज्ञानियों की नकल करके मैंने सैकड़ों लक्ष्य तैयार कर लिए। अब उस लक्ष्य जब मैंने तैयार कर लिए, मैंने जिंदगी के 10 साल 20 साल उसमें लगा दिए। अब 20 साल बाद कोई कहता है कि तूने गलत राह पकड़ ली, अब मेरा दिल धड़कता है, अरे 20 साल तो मैंने खर्च कर दिए, अब क्या करूं। अब वो पता है ना मैं इधर का रहा ना उधर का रहा, फिर यही सोचता है चलो जो लक्ष्य बना लिया है उसी को प्राप्त कर, बाकी जिंदगी भी वो बेचारा उसी में लगा दे, तब भी होश नहीं आती, अरे जो बची है उसको तो मैं सफल करूं, लेकिन सफल करे कैसे। ये काम वो तभी कर सकता है जब पूर्ण गुरु पर भरोसा उसका आ जाए। इसलिए जिसने गुरु के जीवन को बारीकी से अध्ययन नहीं किया, जिसने गुरु की जीवन की घटनाओं को बारीकी से अध्ययन नहीं किया, जिसने गुरु के ज्ञान को, गुरु के शास्त्र को, गुरु की वाणी को ध्यान से समझने की गहरी कोशिश नहीं की, वो फिर इस तृष्णा का लक्ष्य बनाकर उससे कभी नहीं निकल सकेगा। बाकी जीवन जो बचा भी है उसने सुन भी लिया है, सुनकर भी वो उसके कान बहरे ही रहेंगे, और बाकी जीवन भी वो उसी कृष्णा के सागर में डूब कर। ऐसी हमारी अज्ञानता की स्थिति है, मजबूरी की स्थिति। तो इसीलिए सत्पुरुष कहते हैं प्रेमी यदि तूने निष्काम होने के मार्ग पर चलना है, कामना को तृष्णा भी कहते हैं, इसको अग्नि भी कहते हैं, इस आग में मेरा मन जल रहा है, मैं नित्य अतृप्त हूं, नित्य प्यासा हूं, सारे संसार को मैं पानी की तरह से देखता हूं, ये पानी मेरी प्यास बुझाते, लेकिन संसार का जल उसी प्रकार है जिस प्रकार समुद्र का खारा पानी, प्यास तुझे बड़ी गहरी लगी, लेकिन यदि तूने समुद्र का पानी ग्रहण कर लिया प्यास बुझाने के लिए, तुझको ये पता नहीं है तेरी प्यास और बढ़ जाएगी, तू मारा जाएगा, पहले शायद तू 2 घंटे जीता, अब 1 घंटे में ही मर जाएगा। ये संसार के भोगों की प्यास और यहां की कमाई ठीक इसी प्रकार। इसलिए सब कुछ कहते हैं दुनिया में जितने भी शास्त्रों की रचना हुई, जितने भी अवतार आए हैं, जितने भी सदगुरु धरती पर आए हैं, उनका एक ही मार्गदर्शन कि इस वासना की प्यास को तू कम कर, इसलिए तुझको यह बुद्धि दी गई है, मानव जन्म दिया गया है। तो इस मनुष्य जन्म लेकर जिसने गुरु धारण नहीं किया और उसकी बात को समझने की कोशिश नहीं की, बात को समझकर उस मार्ग पर चलने की कोशिश नहीं की, तो फिर वो मनुष्य आत्महत्यारा है, अपने ही मानव जन्म को नाश करने वाला है। इसीलिए सारे शास्त्र उस मनुष्य को पशु कहते हैं, मनुष्य नहीं। चार हाथ पर का मैं जीव मनुष्य कहलाने योग्य भी नहीं रहता, फिर भी मैं संसारियों की दृष्टि में अहंकारी बना रहता। इस अहंकारी बनने का जो फल मुझको मिलता है वो एक ही है, मेरी प्यास और गहरी हो जाती है, मेरी बेचैनी और गहरी हो जाती है। मैं किसी से कह भी नहीं सकता कि मैंने अपने जीवन में गलती की है, यह मैं किसी से कह भी नहीं सकता, लेकिन अंदर से जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं कि मुझसे तो वो गरीब ही अच्छा है जो दिन भर मजदूरी करके दो वक्त की रोटी खरीदता है, उसको पकाकर खा लेता है और रात को चैन की नींद सो जाता है। यही स्थिति है अमीर की और गरीब की। अमीर तो चैन की नींद नहीं सो पाता, बड़ी चिंता फिक्र है, लेकिन गरीब उसको कोई चिंता नहीं है, उसको जानता है कि दिन भर की कमाई करनी है, भोजन खरीद के लाना है, खा के सो जाए। उसका जीवन का प्रोग्राम बड़ा ही छोटा सा, उसकी प्यास भी बड़ी कम है, इसलिए उसको चैन की नींद आ जाती है, पत्थर भी सिर के नीचे लगाकर सो जाता है। आपने कई मजदूर देखे होंगे जो सड़क पर ही सो जाते, कंकड़ों के ढेर पर भी वो सो जाते, हमको नींद गद्दों पर भी। तो सत्पुरुष ने जो अपना जीवन पेश किया है वो वासना निवृत्ति के लिए पेश किया है, कि सारा संसार इस वासना के सागर में डूब रहा है, यही उसके दुख का कारण है, यही उसके पाप करने का कारण है। इसलिए यदि गुरु की तरफ देखना है तो गुरु की जो सीधी सीधी बातें हैं वो आपको अपनानी ही पड़ेगी। वासना का त्याग प्रारंभ कहां से होता है, वो सादे जीवन से, अर्थात अपने जीवन की धीरे धीरे आवश्यकताएं कम करते जाओ, अपने शौक धीरे धीरे घटाते जाओ, और धीरे धीरे जो कमाई करने में वक्त कीमती मानव जन्म का खर्च कर रहे हो उस वक्त को भी बचाते जाओ, कमाई कम करने की कोशिश, संसार के कर्म कम करने की कोशिश, इसके मुकाबले में परमार्थ कर्म करने के लिए वक्त बचाओ। जिसके लिए महाराज कह रहे हैं प्रेमी सत सिमरन सतसंग परीति नित धारे पर उपकारा, मंगत मारग धर्म का सोधे तब उतरे भवनिधि। तो भवनिधि कौन सी है, भवसागर कौन सा है, मेरी वासना ही भवसागर। तो मेरा जो मन है ये वासना का सागर है, इसमें केवल खारा पानी भरा हुआ है, और ये जीव इस खारे पानी को पी पी कर ये तड़प रहा है, बेचैन हो रहा है। तो सत्पुरुष कहते हैं इस मन के अंदर जब तक प्रभु प्रेम रूपी मीठा पानी नहीं भरता, ये खारे पानी का अंत नहीं है। इसीलिए जिसने वो प्रभु भक्ति रूपी प्रेम जल पिया तो मीरा जैसे भक्तों ने जहर भी हजम कर दिया। तो ये वासना जहरी तो है, तो प्रभु प्रेम में वो ताकत है कि वासना रूपी जहर प्याला ये पूरी तरह से खत्म हो जाता है खाली। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वासना जब मेरी खत्म होगी तब मुझको चैन नहीं मिलेगा, ऐसी बात। जिस दिन भी तूने गुरु की बात को महत्वपूर्ण समझ लिया, उसके मुकाबले में संसार की बातों को, संसारियों की बातों को तूने मुसीबत समझ लिया कि मेरे जीवन पर ये बातें सारी मुसीबत, अर्थात वासना को बढ़ाने वाली, तब तू निर्वास होने के मार्ग पर चल पड़ता है और एक दिन तेरे जीवन में ऐसा जरूर आ जाता है कि तू वास्तव में निर्वास हो जाता है। उस स्थिति को ही, उस निर्वास स्थिति को ही अकर्म कहते हैं। तेरे देह से कर्म फिर भी होंगे, कर्म नहीं रुकेंगे, क्योंकि देह प्रारब्ध लेकर पैदा होगा। तो इस देह को जो कर्म करने होते हैं वो इस देह के द्वारा होते ही हैं। सत्पुरुष भी उनसे नहीं बच पाते, लेकिन वो बच इसलिए जाता है फिर भी, क्योंकि वो मन और देह से ऊपर उठ चुका होता है। इस देह के अंदर जो आत्मा है, जो ईश्वर है, उसमें वो जीव स्थित हो चुका, क्योंकि ईश्वर में तृप्ति है। ऐसी तृप्ति है कि जिस तृप्ति को प्राप्त करके ये जीव सदैव सदैव के लिए आप्त काम हो जाता है, अर्थात इसके अंदर कामना पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाती है, पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, अर्थात इसकी बेचैनी हमेशा हमेशा के लिए इसका पीछा छोड़ देती है। तो उस तृप्ति की हालत में ये सारी वाणी प्रकट होती है, उस तृप्ति की हालत में गुरु का जीवन संसार में प्रकट होता है, गुरु के कर्म संसार में प्रकट होते हैं, वो संसार के सारे जीवों के लिए मार्गदर्शन हुआ। इसलिए जब अंतिम जन्म होता है किसी मनुष्य का, तो प्रभु ऐसा प्रारब्ध उसको देते हैं, उसकी देह से ऐसी प्रारब्ध लीला होती है जो सारे संसार को तृप्त करती है। जिस जिस संसारी का विश्वास उस अवतार पर, उस गुरु पर आता चला जाए, चाहे उस गुरु को हुए 100 वर्ष बीत जाए, चाहे 1000 वर्ष बीत जाए, लेकिन वो तृप्ति सदैव मिलती रहती है जब तक विश्वास लोगों का उस अवतार पर, उस गुरु पर आता है। जिस प्रकार गीता की बात आज भी हो रही है, क्योंकि गीता की बात आज क्यों हो रही है, क्योंकि कृष्ण का जीवन निर्वास था। अर्जुन की वासना को भी कृष्ण के मार्गदर्शन ने दग्ध कर दिया, जला दिया, भस्म कर दिया, अर्जुन को भी निर्वास कर दिया, और पता नहीं कितने मन को, कितने जीवों के मन को उस कृष्ण की तालीम ने, उस कृष्ण के मार्गदर्शन ने निर्वास किया हो। इसलिए आज भी कृष्ण गुरु हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है हम कृष्ण को गुरु नहीं मनाते, कृष्ण की पूजा शुरू करते। इसलिए ना ये कभी समझ में आता मैं कौन हूं, ना सारी जिंदगी ये समझ में आता कि ईश्वर क्या, ना मुझे सारी जिंदगी ये समझ में आता कि मेरा बंधन क्या है, ना मुझे सारी जिंदगी ये समझ में आता कि मोक्ष क्या। इसीलिए ईश्वर की भक्ति करके भी मैं भक्तिहीन ही बना रहता हूं। तो इसलिए भक्ति करनी भी है तो पूर्ण गुरु का आसरा लेना ही पड़ेगा, तब ईश्वर की सही उपासना कर पाओगे, तभी निर्वास हो पाओगे, और तभी ईश्वर का दर्शन करके नित्य तृप्त हो पाओगे। इसीलिए हमने अकर्मी होना है। अकर्मी का मतलब ये ना समझ लें कि मैंने कर्म से घृणा करनी शुरू कर दी है। अकर्म का मतलब ये नहीं होता कि कर्म ना करना। अकर्म का मतलब ये होता है कर्म के फल का असर मन पर निल हो जाए। ये स्थिति तभी आती है जब अंतर्यामी परमेश्वर का दर्शन उसको प्राप्त होता है, और वो दर्शन तभी प्राप्त होता है जब वासना को मैं बंधन करके देखता हूं और सारा जीवन का प्रोग्राम निर्वास होने के लिए होता है। इसलिए मैं आवश्यकता पूरी करता हूं देह की, कर्मों के द्वारा, धन के द्वारा, वस्तुओं के द्वारा, लेकिन मेरे जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति होता है, परम तृप्ति होता है, जिसको प्राप्त करके मैं मानव जीवन से सकता हूं। ओ ब्रह्म सत्य सत्य।